एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय में उतर रहे हैं जो हम सबके वजूद की जड़ों से जुड़ा है, प्रागैतिहासिक काल।
हाँ, मतलब मानव इतिहास का वो विशाल लगभग 99% हिस्सा जो लिखी हुई बातों से, रिकॉर्डेड हिस्ट्री से बहुत पहले का है।
और इस सफर में हम ऑक्सफोर्ड के जाने माने पुरातत्वविद क्रिस गॉस्डन के काम को, खास तौर पर उनकी दो अहम किताबों के विचारों को अपना गाइड बना रहे हैं। एक है प्री हिस्ट्री अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और दूसरी प्री हिस्ट्री द मेकिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड।
अब सुनने वाले सोच सकते हैं कि भाई पुरानी हड्डियां और पत्थरों में आज क्या रखा है, क्यों बात करें इसकी।
बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ अतीत की धूल फांकना नहीं है, है ना? ये समझने की कोशिश है कि हम आज के इंसान ऐसे क्यों हैं? हमारा सोचना, महसूस करना, हमारे समाज, ये सब कैसे बने?
हाँ, हमारी जड़ें जितनी गहरी हैं उनका असर आज भी उतना ही ज्यादा है, और गॉस्डन इसी बात पर जोर देते हैं।
वो हमें चुनौती देते हैं कि हम इतिहास को बस एक सीधी लाइन में न देखें, कि पहले जंगली थे, फिर धीरे धीरे सभ्य हो गए।
सही कहा, वो प्रागैतिहासिक काल को एक बहुत ही क्रिएटिव, डायनामिक और असल में जुड़े हुए दौर की तरह देखने को कहते हैं, और ये नजरिया आज को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है।
तो चलिए आज क्रिस गॉस्डन के नजरिए से प्रागैतिहासिक मानव मन और समाज की कुछ परतों को खोलने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, तो पहले थोड़ा क्रिस गॉस्डन के बारे में जान लें, कौन है ये?
क्रिस गॉस्डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूरोपीय पुरातत्व के प्रोफेसर हैं और वो पिट रिवर्स म्यूजियम के क्यूरेटर भी रह चुके हैं, जो अपनी मानवशास्त्रीय चीजों के कलेक्शन के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
अच्छा, तो मतलब चीजों से उनका गहरा नाता रहा है।
हाँ, उनकी खासियत यही है, वो भौतिक संस्कृति यानी मटेरियल कल्चर के एक्सपर्ट हैं। मतलब चीजों और इंसानों के बीच का जो रिश्ता है उसे वो बहुत गहराई से समझते हैं।
उनमें वो बात है कि वो जमीनी खुदाई की बारीकियों को भी जानते हैं और बड़े सैद्धांतिक विचारों को भी समझते हैं। एक अच्छा मेल है ये।
बिल्कुल, और उनका नजरिया सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, वो पूरी दुनिया के प्रागैतिहासिक काल को एक साथ रखकर देखते हैं। और जो सबसे दिलचस्प बात है, वो पुरातत्व को मनोविज्ञान, नृविज्ञान, यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस से भी जोड़ते हैं।
वाह, ये तो काफी अनोखा कॉम्बिनेशन है।
हाँ, और उनका पापुआ न्यू गिनी में किया गया फील्ड वर्क उसने उन्हें ये समझने में मदद की कि कैसे आज भी कई स्वदेशी समुदाय अपने माहौल और चीजों से गहरे जुड़े होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर उन्हें प्रागैतिहासिक काल की एक बहुत ही रिच और सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीर बनाने में मदद करती हैं।
तो वो सिर्फ तथ्य नहीं बता रहे, बल्कि मानव होने के मतलब पर ही सवाल उठा रहे हैं एक तरह से।
बिल्कुल।
तो अगर हम उनकी इन दोनों किताबों के सार की बात करें तो मुख्य आइडिया क्या है?
देखिए, अगर एक लाइन में कहना हो तो गॉस्डन का हरीश विचार ये है कि प्रागैतिहासिक काल कोई बीता हुआ आदिम सा दौर नहीं है, वो एक जिंदा बुनियाद है,
एक फाउंडेशन
जिस पर हम आज भी टिके हैं और जो हमें लगातार आकार दे रही है।
एग्जैक्टली।
ये कोई धुंधला अतीत नहीं, बल्कि हमारे आज का, हमारे वर्तमान का एक सक्रिय हिस्सा है।
और इसमें शायद सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि हमारी चेतना, हमारा मन, वो कोई बनी बनाई चीज नहीं थी।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। गॉस्डन कहते हैं कि हमारा मन लाखों सालों में हमारे पूर्वजों और उनके आसपास की भौतिक दुनिया, उनके औजार, उनकी कला, उनके रहने की जगह, इनके बीच एक गहरे दो तरफा इंटरैक्शन से बना है।
इसे ही वो भौतिक जुड़ाव या मटेरियल एंगेजमेंट कहते हैं।
जी हाँ, ये पारंपरिक पश्चिमी सोच को चुनौती देता है कि दिमाग अलग है और पदार्थ अलग।
मतलब हम सोचते हैं दिमाग चीजें बनाता है, लेकिन गॉस्डन कह रहे हैं कि चीजें भी दिमाग को बनाती हैं।
बिल्कुल, चीजों को बनाना, इस्तेमाल करना, उनके साथ जीना, इस पूरी प्रक्रिया ने हमारे सोचने के तरीके, हमारी क्षमताओं को गढ़ा है। चीजें सिर्फ मतलब पैसिव बैकग्राउंड नहीं है, वो हमारे इंसान बनने की कहानी में एक्टिव एजेंट्स हैं।
ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो सीधी चढ़ाई वाली कहानी छोड़नी होगी।
हाँ, कि शिकारी से किसान बने, फिर शहरी, और हर कदम पिछले से बेहतर था। ये नजरिया बहुत सिंपलिस्टिक है।
गॉस्डन कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को उसकी अपनी शर्तों पर देखो। वहां जबरदस्त रचनात्मकता थी, समाज के अलग अलग प्रयोग हो रहे थे,
और दुनिया पहले से ही जुड़ी हुई थी, जिसे हम शायद आज ग्लोबलाइजेशन का पुराना रूप कह सकते हैं।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं गॉस्डन के कुछ मुख्य विचारों और उनके उदाहरणों को देखते हैं।
हाँ जरूर, सबसे पहले वही केंद्रीय विचार इंसान और चीजों का सह विकास, को एवोल्यूशन।
ये कि हमने औजार बनाए और औजारों ने हमें बनाया, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है,
लेकिन सोचिए जरा, ओल्डोवान पत्थर के औजार जो लगभग 25-30 लाख साल पुराने हैं, ओल्डोवाई गौर जैसी जगहों पर मिले हैं।
बहुत सिंपल लगते हैं देखने में।
हाँ, लेकिन उन्हें बनाने के लिए हाथ और दिमाग का जैसा तालमेल चाहिए था, पत्थर को समझना, सही एंगल से चोट करना, इसने लाखों सालों में हमारे हाथों को ज्यादा कुशल बनाया और हमारे दिमाग के उन हिस्सों को विकसित किया जो प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं।
और फिर आते हैं वो एशुलियन हैंड एक्सेस जो करीब 15 लाख साल पहले शुरू हुए।
हाँ, वो तो कमाल के हैं। उनमें एक खास तरह की सिमेट्री है, एक सुंदरता है, और सबसे अजीब बात, वो हजारों किलोमीटर के दायरे में और लाखों साल तक लगभग एक जैसे डिजाइन में मिलते हैं।
इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि बनाने वालों के दिमाग में एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट था, एक सौंदर्य बोध था, शायद एक साझा सांस्कृतिक समझ थी। ये सिर्फ औजार नहीं थे, ये उस जमाने की एक तरह की डिजाइन लैंग्वेज थी।
और फिर आग का कंट्रोल, वंडरवर्क गुफा या केसेम गुफा से जो सबूत मिले हैं।
आग तो गेम चेंजर थी, सिर्फ खाना पकाना आसान नहीं हुआ,
पूरी जिंदगी बदल गई होगी। रात में रोशनी, सुरक्षा,
बिल्कुल। और लोग आग के आसपास बैठकर ज्यादा घुलने मिलने लगे, कहानियां, बातें, कम्युनिकेशन बढ़ा। और कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि पके हुए भोजन से मिली एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमारे दिमाग के विकास में भी मदद की।
तो देखिए, एक चीज आग, उसने हमारे समाज, संवाद और शायद दिमाग को भी कितना बदल दिया, चीजों का हम पर असर।
हाँ, अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर, गहरा समय यानी डीप टाइम, और ये चुनौती कि इतिहास हमेशा बेहतर ही होता गया है।
ये पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। लिखित इतिहास तो बस कुछ हजार साल, जबकि इंसानी कहानी लाखों साल पुरानी है, वो 99% वाला आंकड़ा।
हाँ, इस लंबे नजरिए से देखें तो 19वीं सदी का वो विचार कि इंसान बस प्रगति की सीढ़ी चढ़ता गया, शिकार से खेती, खेती से शहर, वो बहुत, मतलब, नाकाफी लगता है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद कृषि क्रांति है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। हम उसे हमेशा एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट मानते हैं।
हाँ, लेकिन गॉसडन कहते हैं, रुको, ये इतना सीधा नहीं था, ये एक तरह का सौदा था, एक ट्रेड ऑफ।
सौदा कैसे?
देखिए, खेती से अनाज मिला, आबादी बढ़ी, स्थायी बस्तियां बनी, ये फायदे थे। लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी।
क्या कीमत?
ज्यादा मेहनत, एक ही जगह बंद कर रहना, बीमारियां, खसकर जो जानवरों से इंसानों में आई, और पहली बार बड़े पैमाने पर सामाजिक ऊंच नीच, असमानता पैदा हुई।
मतलब शिकारी संग्राहक जीवन में ज्यादा बराबरी थी शायद?
संभवतः। ज्यादा घूमने फिरने की आजादी थी, भोजन में ज्यादा विविधता थी, शायद खाली समय भी ज्यादा था। तो खेती अपनाना हमेशा एक तरफा सुधार नहीं था, ये एक चुनाव था जिसके अपने फायदे और नुकसान थे।
और समाज कैसे बने, इसका भी कोई एक फिक्स तरीका नहीं था।
बिल्कुल, तुर्की में चाटलहोयोक को देखिए, 9000 साल पुरानी बस्ती, हजारों लोग एक साथ रहते थे, घरों में छत से एंट्री होती थी।
लेकिन कोई राजा का महल या बड़ा मंदिर नहीं मिला वहाँ?
नहीं, सब लगभग बराबर लगते हैं। ये दिखाता है कि बिना सेंट्रलाइज्ड रूल के भी बड़े समुदाय बन सकते थे।
या फिर अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कमाल की प्लानिंग, सड़कें, नालियां।
हाँ, लेकिन वहां भी मिस्र या मेसोपोटामिया जैसे राजाओं के बड़े बड़े महल या मूर्तियां नहीं मिलती।
तो सभ्यता का मतलब हमेशा पिरामिड और फेरो नहीं होता?
सही कहा, प्रागैतिहासिक काल ऐसे सामाजिक प्रयोगों से भरा पड़ा है, अलग अलग रास्ते तलाशे गए।
अब तीसरे अहम मुद्दे पर आते हैं, चीजें, कला और हमारी सोचने की क्षमता, कॉग्निशन का रिश्ता।
गॉसडन का तर्क है कि कला या सिंबोलिज्म कोई ऐसी चीज नहीं जो अचानक होमो सेपियंस के साथ प्रकट हो गई, ये भी उसी भौतिक जुड़ाव का हिस्सा है जो धीरे धीरे विकसित हुआ।
जैसे वो ब्लोम्बोस गुफा वाले गेरू के टुकड़े।
हाँ, दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं 100,000 साल पुराने, उन पर ज्यामितीय विशान उकिरे हुए हैं। ये दिखाता है कि इंसान बहुत पहले से चीजों पर, मतलब, गढ़ रहा था, प्रतीक बना रहा था।
और फिर वो गोबेखली टेपे वाली जगह तुर्की में, वो तो दिमाग हिला देती है।
बिल्कुल, लगभग 11,500 साल पहले, मतलब खेती शुरू होने से भी पहले,
शिकारी संग्राहकों ने वो विशाल टी आकार के पत्थर के खंभे खड़े किए, जिन पर जानवरों की नक्काशी है।
हाँ, और वो कोई रहने की जगह नहीं थी, शायद कोई धार्मिक या सामाजिक जमावड़े का केंद्र था। ये इसलिए चौंकाता है क्योंकि ये उस पुरानी थ्योरी को पलट देता है कि पहले खेती आई, फिर सरप्लस हुआ, फिर कॉम्प्लेक्स समाज और स्मारक बने।
यहाँ तो स्मारक पहले आ गए।
एग्जैक्टली, ये दिखाता है कि बड़े पैमाने पर संगठित होकर स्मारक बनाने का काम खेती से पहले भी हो सकता था।
और गुफाओं की पेंटिंग्स, लास्को, अल्टामीरा,
वो सिर्फ सुंदर चित्र नहीं है। गॉस्डन जैसे विद्वान मानते हैं कि उन्हें बनाने और देखने की प्रक्रिया उसने हमारे पूर्वजों की विजुअल मेमोरी, पैटर्न पहचानने की क्षमता, शायद कहानियां गढ़ने की क्षमता को बढ़ाया होगा। ये एक तरह का कॉग्निटिव वर्कआउट था।
और बड़े स्मारक, स्टोनहेंज, पिरामिड,
गॉस्डन इन्हें सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि बाहरी स्मृति प्रणालियां, एक्सटर्नल मेमोरी सिस्टम्स कहते हैं।
मतलब जानकारी स्टोर करने का तरीका।
हाँ, महत्वपूर्ण ज्ञान, मिथ, सामाजिक नियम, इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखने का तरीका, बिना लिखे हुए। जैसे आज हम किताबें या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ये स्मारक उस जमाने की हार्ड ड्राइव जैसे थे।
बहुत दिलचस्प नजरिया ये।
और आखिरी थीम जो आज के जमाने से काफी जुड़ती है, प्राचीन जुड़ाव और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं।
गॉस्डन कहते हैं ये नया नहीं है।
हाँ, वो कहते हैं इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये इंसान की कहानी का हिस्सा हमेशा से रहा है।
सोचिए, होमो सैपियंस अफ्रीका से निकले और पूरी दुनिया में फैल गए।
ऑस्ट्रेलिया पहुंचना करीब 65,000 साल पहले, इसके लिए तो समुद्र पार करने की तकनीक चाहिए थी, नाव बनानी पड़ी होगी। ये दिखाता है कि वो कितने एडवेंचरस थे, कितने कनेक्टेड थे।
और हम अकेले भी नहीं थे। हमारे पूर्वजों का सामना नियंडरथल और डेनिसोवंस जैसी दूसरी मानव प्रजातियों से हुआ।
और सिर्फ सामना ही नहीं, मेल जोल भी हुआ, इंटरब्रीडिंग हुई। आज भी हम में से कई लोगों के डीएनए में उनके अंश मौजूद हैं।
तो हमारी कहानी सिर्फ रिप्लेसमेंट की नहीं बल्कि मिक्सिंग की भी है।
बिल्कुल। और व्यापार, हजारों साल पहले भी लंबी दूरी का व्यापार होता था,
जैसे वो ऑब्सिडियन, ज्वालामुखी कांच,
हाँ, जो बहुत धारदार औजार बनाने के काम आता था, या लैपिस लाजुली जैसा नीला पत्थर। ये अपनी उत्पत्ति की जगह से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पाए गए हैं।
लैपिस तो अफगानिस्तान से मिस्र और मेसोपोटामिया तक पहुंचा था, है ना?
जी हाँ, ये सब दिखाता है कि प्रागैतिहासिक समाज आइसोलेटेड नहीं थे, उनमें विचारों और चीजों का लगातार आदान प्रदान होता रहता था।
तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो क्रिस गॉस्डन के काम से कुछ सबसे जरूरी संदेश क्या निकलते हैं हमारे लिए?
पहला और शायद सबसे अहम, हम और हमारी बनाई चीजें एक दूसरे को बनाती हैं। ये मानव वस्तु सह विकास वाली बात।
और ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, आज भी है। जैसे स्मार्टफोन, वो हमें कैसे बदल रहा है, हमारी याददाश्त, हमारा ध्यान।
बिल्कुल, ये वही 30 लाख साल पुरानी कहानी है, बस चीजें बदल गई हैं। दूसरा, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, ये डीप टाइम वाला पर्सपेक्टिव।
हमारा बहुत सारा व्यवहार, हमारी प्रवृत्ति, वो सब प्रागैतिहासिक काल में घड़ी गई थी।
हाँ, इस लंबी दृष्टि से शायद हम आज की कुछ समस्याओं को, जैसे गुटबाजी या हिंसा की प्रवृत्ति, उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। तीसरा, इतिहास सीधी रेखा में नहीं चलता और प्रगति की कीमत होती है।
मोर रैखिक प्रगति वाली सोच को नकारना, समाज बनाने का कोई एक सही रास्ता नहीं है।
हाँ,
जैसे भारत में ही कितनी विविधता है जीवन शैलियों की।
बिल्कुल, उस विविधता को सराहने की जरूरत है। चौथा, दुनिया हमेशा से जुड़ी हुई थी, प्राचीन वैश्वीकरण।
लोग हमेशा से यात्रा करते रहे हैं, व्यापार करते रहे हैं, विचार बांटते रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन बस इसी का नया रूप है।
और पांचवा, हमारा मन सिर्फ हमारे सिर के अंदर नहीं है, वो विस्तारित मन या एक्सटेंडेड माइंड वाला आइडिया।
हमारी सोचने की क्षमता हमारे औजारों, प्रतीकों, लिखने पढ़ने के तरीकों में फैली हुई है। जैसे फोन हमारी बाहरी मेमोरी बन जाता है।
हाँ, या कैलेंडर हमारी भविष्य की योजना। वैसे ही हमारे पूर्वजों के लिए उनके औजार या स्मारक उनकी सोच का विस्तार थे।
गॉस्डन के काम में कुछ विचार ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ।
कुछ खास पंक्तियां या कथन?
ये कहानी नहीं बल्कि इंसान और चीजों के बीच 30 लाख साल लंबे एक तरह के डांस या जुगलबंदी की कहानी है।
मतलब हम चीजों से बनते हैं, सिर्फ उन्हें बनाते नहीं, ये दो तरफा रिश्ता है।
बिल्कुल। दूसरा विचार कृषि क्रांति पर। खेती कोई सीधी तरक्की नहीं बल्कि एक सौदा था, जिसमें इंसानों ने घूमने फिरने की आजादी, भोजन की विविधता और शायद बराबरी के बदले ज्यादा मेहनत, बीमारी और ऊंच नीच वाली जिंदगी को चुना।
ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम प्रगति कहते हैं वो अक्सर कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी कीमत होती है।
तीसरा, ग्लोबलाइजेशन कोई इंटरनेट युग की देन नहीं, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। प्रागैतिहासिक समाज उतने अलग थलग नहीं थे जितना हम सोचते थे। ये हमारे जुड़ाव की कहानी को एक गहरा आयाम देता है।
चौथा, जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगता है, प्रागैतिहासिक काल हमें दिखाता है कि समाज बनाने के कितने अलग अलग तरीके संभव हैं। ये हमें आज की बनी बनाई सोच से आजाद करता है। ये दिखाता है कि आज जो हमें जरूरी या प्राकृतिक लगता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था और नहीं हमेशा ऐसा रहेगा।
हाँ, ये भविष्य के लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है। और पांचवां, इंसानी दिमाग कोई तैयारशुदा तोहफा नहीं था, बल्कि इसे हमने लाखों साल चीजों के साथ काम करते हुए, उनके साथ जुड़ते हुए खुद गढ़ा है।
हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी चेतना, ये हमारी सक्रिय भागीदारी का नतीजा है। कमाल के विचार हैं ये।
तो अब सवाल ये है कि इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या हम इन्हें किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल। एक तो ये हमें लंबी सोच अपनाने में मदद कर सकता है।
आज की समस्याओं को सिर्फ आज के चश्मे से न देखकर हजारों सालों के मानवीय अनुभव के संदर्भ में देखना, जैसे पर्यावरण संकट,
शायद ज्यादा टिकाऊ समाधान मिले। दूसरा, हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं।
कोई भी नई चीज सिर्फ एक टूल नहीं होती, वो हमें बदलती भी है। ये पूछना जरूरी है कि ये ऐप या गैजेट मेरे सोचने, मेरे रिश्तों को कैसे बदल रहा है,
ताकि हम तकनीक के गुलाम ना बने। तीसरा, ये हमें सामाजिक मान्यताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है।
जब पता हो कि आज की ऊंच नीच या परिवार के खास ढांचे हमेशा से ऐसे नहीं थे, तो विकल्पों के बारे में सोचना आसान हो जाता है।
बदलाव की उम्मीद जगती है, और अतीत में इंसान जलवायु परिवर्तन से कैसे जूझा, इससे सीखना आज की जलवायु परिवर्तन की बहस को भी दिशा दे सकता है।
बिल्कुल। और शायद सबसे आसान चीज, हम अपने आसपास की भौतिक दुनिया को ज्यादा ध्यान से देख सकते हैं।
वो कप, वो कपड़े, वो घर, इन सब चीजों का अपना इतिहास है। इनमें सामाजिक रिश्ते बुने हुए हैं, उन्हें महसूस करना
जिंदगी को शायद ज्यादा मायने दे सकता है। और शिक्षा में भी करके सीखने का महत्व पता चलता है। हाथ से कुछ बनाना सिर्फ स्किल नहीं, ये सोचने का एक तरीका विकसित करता है।
इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या कह सकते हैं कि सबसे जरूरी सीख क्या रही?
मेरे लिए तो वो विस्तारित मन वाला विचार कि हमारा मन सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं, बल्कि हमारे औजारों, माहौल, चीजों में फैला हुआ है। ये सोचने का तरीका ही बदल देता है कि हम कैसे अपने फोन या डायरी के जरिए सोचते हैं।
हाँ, ये वाकई शक्तिशाली है। और मेरे लिए शायद ये एहसास कि जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वो कितना प्राचीन है। हम सोचते हैं कि आज दुनिया सिकुड़ गई है, लेकिन इंसानी जुड़ाव, यात्रा, विचारों का आदान प्रदान, ये सब तो हजारों लाखों साल से चल रहा है। ये हमारी फितरत का हिस्सा है।
तो कुल मिलाकर क्रिस गॉस्डन हमें याद दिलाते हैं कि हमारा गहरा अतीत मरा नहीं है, वो हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारी बनाई दुनिया में जिंदा है।
उसे समझना सिर्फ इतिहास जानना नहीं, बल्कि खुद को और अपने आज को बेहतर समझना है।
और शायद यही एक ज्यादा समझदार भविष्य बनाने की दिशा में पहला कदम है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।